ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। छब्बीस ग्यारह मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाए जाने पर कल शाम विमान से उतरते ही हवाई अड्डे पर मौजूद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान से राणा को दिल्ली लेकर आई। उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और देर रात पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां एनआईए ने तहव्वुर राणा की 20 दिन की हिरासत मांगी। आतंकी सरगना राणा ने अमेरिका से अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगवाने के लिए कई तिक्रम भिड़ाए, पर उसके अंतिम प्रयास भी विफल हो गए। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वित प्रयासों के साथ ही संबंधित अमरीकी अधिकारियों की मदद से एनआईए ने समूची प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप राणा का प्रत्यर्पण हो सका। इससे आतंकवाद में शामिल अपराधियों को न्यायिक कटघरे में लाने के भारत के उल्लेखनीय प्रयास स्थापित हुए हैं, चाहे अपराधी दुनिया के किसी भी हिस्से में भागे हों। राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी और घोषित आतंकी संगठनों लश्कर ए तायबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी के सदस्यों के साथ ही पाकिस्तान स्थित अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में घातक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे। केंद्र सरकार ने तहव्वुर राणा मामले में अधिवक्ता नरेंद्र मान को विशेष सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नरेंद्र मान को 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मुकदमा चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। परियोजनाओं में वाराणसी में आधारभूत ढांचे का विकास और सड़क संपर्क शामिल है। बाद में श्री मोदी मध्य प्रदेश की यात्रा करेंगे और ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आनंदपुर धाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार पूरी शक्ति से ड्रग माफियाओं को खत्म कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में संबंधित एजेंसियों के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए लक्ष्य के साथ देश की एजेंसियों ने नशीले पदार्थों से जुड़े माफिया के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाए हैं। इस सिलसिले में असम में 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 24 करोड़ 32 लाख रुपए मूल्य के 30 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामाइन गोलियां जब्त की गई हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार का ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान दृढ़ता से जारी रहेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने गेहूं खरीद और प्रधानमंत्री सूर्य घर पहल समेत विभिन्न योजनाओं में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन की सराहना की है। श्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना और रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं खरीद पर संयुक्त समीक्षा बैठक की। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कल पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को हनुमान जयंती के अवसर पर 12 अप्रैल को कोलकाता में रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी। हालांकि न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने उत्तर कोलकाता के एक मार्ग से भगवान हनुमान मंदिर पर संपन्न होने वाली रैली के लिए कई शर्तें निर्धारित की है। एकल पीठ के निर्देशों के अनुसार रैली 12 अप्रैल को शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आयोजित की जा सकती है, जिसमें भाग लेने वालों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। रैली में डीजे के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। हनुमान जयंती पर कोलकाता पुलिस द्वारा रैली आयोजित करने से मना करने के बाद प्रतिपक्ष के नेता ने अदालत का रुख किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने रैली आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।